क्या हर निराकार आत्मा ये साकारी रूप धारण करती है? आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है,
ये बात तो सारी दुनिया जानती है। क्या कि ये शरीर, जो शरीर अभी पुरुषार्थी शरीर भले है, ईश्वरीय है, राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले भी हैं, लेकिन वो शरीर सब खलास हो जाएंगे। फिर जब सब शरीर खलास हो जाएंगे तो नए शरीर कहाँ से आएंगे? माने ये पांच तत्वों का, जो पुराने पांच तत्वों का शरीर है जो सड़ता जा रहा है, ये तो खलास हो जाना है और फिर नया शरीर हमको रिजुविनेट होकर के मिलेगा। तो सारी दुनिया जानती है भगवान निराकार है, वो री इनकारनेट करते हैं। क्या री इनकारनेट माना? री शब्द जब अंग्रेजी में लगाया जाता है तो कहते हैं दोबारा। हाँ, रिपीटेशन माना, आदि में भी और अंत में भी। शिव जयंती भी गाई जाती है, जरूर साकार में आया है। जयंती किसकी मनाई जाती है, निराकार की, आत्मा की, या साकार जब जन्म लेता है उसकी? जब साकार रूप में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जयंती मनाई जाती है। तो परमात्मा भी जो निराकार ज्योति बिंदु है, जब इस साकार सृष्टि पर आता है तब उसकी जयंती मनाई जाती है। जयंती मनाने का मतलब यह है कि वो निराकार जब इस सृष्टि पर आकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो उसकी जयंती मनाई जाती है। जरूर साकार में आया है कुछ करने के लिए, ऐसे नहीं कि और जो धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु आए, महात्मा आए, आया राम गया राम, दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, दुनिया ज्यों की त्यों नीचे गिरती चली गई। तो ऐसे नहीं है, वो जरूर इस सृष्टि पर आकर के कुछ परिवर्तन करके जाता है, तब उसको हर धर्म की आत्मा इतना मान्यता देती है, सारी दुनिया उस गॉडफादर को याद करती है। तो जरूर कुछ करने आया है, साकार में आया है, भक्त जो पतित हैं उनको पावन बनाने के लिए आया है। सब गति करने आते हैं, कोई में तो आवेगा ना। क्या कहा? कोई में आवेगा ना, ऐसे क्यों बोला कि कोई में आवेगा? अरे आकर के ही तो बोल रहा है ब्रह्मा कीर्तन में कि बिना आए बोल रहा है, फिर आवेगा ऐसे क्यों कह दिया है? माने परिवर्तन करने के लिए ब्रह्मा का शरीर निमित्त नहीं बनता है, परिवर्तन करने के लिए इस कलयुग की दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाने के लिए उसे कोई दूसरे चोले में आना है। वो ज्ञान का सागर है, लिबरेटर है। क्या वो आता किस लिए है? लिबरेट करने आता है, छुड़ाने के लिए आता है, जो भी जिनके जैसे जैसे जो भी बंधन है उन सब बंधनों से सबको मुक्त करने आता है। इस शरीर के बंधन से भी मुक्त करता है, मनुष्यों के बंधन से भी मुक्त करता है, राक्षसी बंधनों से भी मुक्त कराता है। तो लिबरेटर है, पावन दुनिया में ले जाने वाला है। अगर ब्रह्मा का चोला लिबरेटर होता, पावन दुनिया में ले जाने वाला होता तो 69 में तो शरीर छोड़ गया, लेकिन कोई को लिबरेट तो किया नहीं, शरीर के दुख दर्दों से भी कोई लिबरेट नहीं हुआ। और जो मनुष्यों के बंधन हैं, उन आपसी बंधनों से भी लिबरेट कोई नहीं हुआ, पावन दुनिया में भी नहीं ले गया। क्या जो भी तंत्र है वो सब भ्रष्ट तंत्र है। तो दुनिया दो प्रकार की है, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया, शांति धाम और सुख धाम। यहाँ बहुत साधु संत आदि आकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। क्या कौन से साधु संत? बाहर की दुनिया के कि अंदर के हैं? अंदर की दुनिया के जो साधु संत हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ा है, वो भी बाबा के सामने जब आते हैं तो कहते हैं हम तो बहुत अशांत। अरे अशांत है तो बाबा के बन जाओ ना, हैं? सरेंडर बुद्धि हो जाओ ना, सो नहीं होंगे। क्यों क्यों? क्योंकि आदत पड़ चुकी है। जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, तो उस कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान पर रख दो तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। ऐसी हालत हुई पड़ी है, कहते हैं हमको शांति चाहिए तो बाप कहते हैं ये शांति धाम तो नहीं है, क्या तुम यहाँ आकर के सरेंडर भी हो जाओ तो तुम चाहो कि यहाँ आकर के तुम सुखधाम में आते ही चले जाओगे या तुमको सदाकाल की शांति तुरंत ही मिल जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया शांति धाम है ही नहीं। शांति धाम है निराकारी दुनिया, क्या? और निराकारी दुनिया में देहधारी कोई जाते नहीं, क्या कहा? चलो मुरली में बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, शांति धाम को कहाँ उतार लेंगे? इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो शांति धाम इस सृष्टि पर होगा उसमें भी तब जा सकेंगे जब तुम आत्मा अपन को समझने की पक्की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे तो जो माउंट आबू में शांति धाम बनेगा उस स्थिति में भी तुमको कोई पहुंचने नहीं देगा। जैसे दुनिया मरकट के खपके खत्म हो जाएगी विनाश में, वैसे ही तुम्हारी हालत भी हो जाएगी। तो शांति धाम में शांति तो मिल सकती है, यहाँ शांति कैसे होगी? अच्छा चलो बाप कहते हैं अशरीरी हो, अपन को आत्मा समझ कर बैठो थोड़े समय, कुछ तो प्रैक्टिस करो। परंतु ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? क्या कोई हाथ पांव बांध करके बैठ जाए कि हम शांति धाम में बैठ जाते हैं, चलो हम दिखाते हैं शांति धाम में कैसे बैठा जाता है, तो कब तक बैठे रहेंगे? कर्म धारा बगैर तो कोई रह नहीं सकता। जब तक कर्मेंद्रियां हैं तो कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़े। आंख है तो आंख देखेगी, कान है तो कान सुनेंगे, हाथ है तो कुछ न कुछ चलन फिरन करेंगे, पांव है तो वो भी चलेगा। तो बाप कहते हैं ऐसे बैठ नहीं सकेंगे सदाकाल। कैसे? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और बैठ जाए हाथ चौकड़ी मार करके, वो सदाकाल के लिए साबित नहीं हो सकता। तुम बच्चों को बाप शिक्षा देते हैं अपन को शरीर से आत्मा अलग कर बैठो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो, ऐसे नहीं कर्म धारा छोड़ दो। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म इंद्रियों की भूख तो मिटानी पड़ती है। कर्म इंद्रियों से कर्म करो, लेकिन ऐसे कर्म करो जिससे मन बुद्धि कर्म इंद्रियों के भोग में लिप्त न हो सके, लिम्पायमान न हो। देह अभिमान छोड़ दो, क्या देह अभिमान पूर्वक इंद्रियों से कार्य नहीं लेना है। देह से शरीर हो माम एकम याद करो, इस याद को योगाग्नि कहा जाता है। किस याद को? है एक बाप की याद को योगाग्नि कहा जाता है। अगर बाप के साथ साथ कोई दूसरे देहधारी की भी याद आती है तो वो योगाग्नि नहीं कहेंगे। योगाग्नि तभी ही होगी सफल जब एक की याद में रहे। कर्म भल कोई भी करो, लेकिन याद एक को करो। अरे कोई के संग के रंग में आएंगे तो वो याद नहीं आएगा? हैं? किसी का संग करेंगे तो संग दोष नहीं लगेगा? हैं? लगेगा ना, 63 जन्म संग दोष लगता आया है ना। बड़े बड़े महारथी हुए, रामकृष्ण जैसी आत्माएं हुई, उनको भी संग दोष तो लगा ना। नीचे गिरे कि नहीं गिरे? तो हमको नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन फिर भी क्या करना है? बार 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 प्रयास करना है। एक बाप दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो संग करना है तो किसका करना है? एक बाबा का। इसको योगाग्नि कहा जाता है। उनसे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे। किनसे? एक बाप दूसरा न कोई। आत्माओं को बाप कहते हैं। मुझे निराकार बाप के साथ योग लगाओ। किसके साथ योग लगाओ? मैं जो निराकार बाप इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ, निराकारी स्टेज वाला, उसके साथ तुम योग लगाओ तो खाद तुम्हारी सारी निकल जाएगी। जो भी जन्म जन्मांतर खाद पड़ी है, कौन सी खाद? संग के रंग की खाद पड़ी है ना। सतयुग से त्रेता में आए तो चांदी समान आत्माएं ढेर सारी परम धाम से नीचे करोड़ों की तादाद में नीचे उतर पड़ी इकट्ठी। कितनी उतरी त्रेता में? हैं? 6-8 करोड़ मनुष्य आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई। तो उन चांदी के संग वाली आत्माओं का संग किया तो कुछ रंग तो लगेगा ना। द्वापर में आए तो तांबे जैसी ढेर सारी आत्माएं कामी क्रोधी ऊपर से नीचे उतर पड़ी, उनके संग के रंग में आना पड़ा। फिर कलयुग आया तो लोहे और पत्थर जैसी पत्थर बुद्धि आत्माओं के संग में आना पड़ा, तो उनके संग का रंग लग गया। उस समय परमात्मा बाप शिव बाबा तो था नहीं, तो संग किसका लगा? दुष्ट संग ही लगा। अभी तो अभी क्या अंतर है पहले में और अब में है? अभी तो बाबा आया हुआ है ना, बाबा तो निराकारी है सदैव, वो तो सदाशिव कहा जाता है। सदाशिव का मतलब क्या है? वो चाहे जो भी कर्म करेगा कल्याणकारी होगा, वो चाहे जो भी भाषा बोलेगा वो भाषा भी कल्याणकारी होगी। हर हालत में जो भी संग के रंग में आएगा वो पारसनाथ के संग में आकर क्या बनेगा? सोना बनेगा, सच्चा बनेगा। तो यादगार भी बनाई हुई है भक्ति मार्ग में पारसनाथ का मंदिर, तो तुम्हारी खाद सारी निकल जाएगी, तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी। ये है पावन बनने की युक्ति। बाकी नरकवासी गुरु आदि तो स्वर्गवासी बना ही नहीं सकते। क्या जो निराकारी स्टेज में रहने वाला शांति धाम में सदैव रहने वाला वो बुद्धियोग से कहां रहता है? हैं? वो बाप बुद्धियोग से कहां रहता है? सदैव भले इस दुनिया में आता है लेकिन बुद्धियोग उसका कहां रहता है? निराकारी दुनिया में। तो वो निराकारी दुनिया में रहने वाला वो तुमको निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनावेगा। ये इस दुनिया के जो गुरु लोग हैं, जो इस नरकवासी दुनिया के रहने वाले हैं, वो स्वर्गवासी तुमको नहीं बना सकेंगे। ना खुद मुक्ति धाम जा सकते हैं, ना दूसरों को ले जा सकते हैं। बल गुरुओं ने कह दिया मुख से कि महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, लेकिन निर्वाण धाम में कोई वापस जाता नहीं है। अगर एक भी गया होता तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाते, तो ना खुद जा सकते ना दूसरों को ले जा सकते। कोई से भी पूछो कृष्ण कहाँ होता है, गुरुओं से सन्यासियों से महात्माओं से कोई से भी पूछो कि कृष्ण कहाँ होता है। अच्छा ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासियों से पूछो कृष्ण कहाँ होता है, हैं? वो क्या कहेंगे? कहाँ होता है? वो कहेंगे सत्युग में होता है। अच्छा सत्युग में होता है तो सत्युग की यादगार क्या यहाँ कृष्ण के चित्र बनते हैं? सत्युग के और त्रेता युग के राम और कृष्ण के चित्र क्या इस दुनिया में मंदिरों में दिखाए जाते हैं? उनका तो कोई चरित्र नहीं है। तो चरित्र किसका है? उन राम कृष्ण की आत्माओं ने जो इस जन्म में आकर के प्रवेश किया है जिन बच्चों में, उनका चरित्र है। तो कोई से भी पूछो कृष्ण कहाँ है तो कह देते हैं हाजरा हुजूर है। कहीं नहीं मिलता तो कहते हैं हाजरा हुजूर है। अब कृष्ण का तो वो शरीर खत्म हो गया, बूढ़ा हुआ, शरीर छोड़ा, खलास। हाँ बाकी कृष्ण की आत्मा जरूर हाजरा हुजूर है। क्या कहा है? कौन है हाजरा हुजूर? सर्वव्यापी कौन है इस समय? है कृष्ण की सोल, दादा लेखराज की सोल इस समय क्या है? हाजरा हुजूर। ये कैसे? ये वाणी कब बोली गई है? है जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब ये वाणी बोली गई। क्या बोला? हाँ कृष्ण की आत्मा इस समय हाजरा हुजूर है। तो किस समय की बात हुई होगी? जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्टेज को धारण कर चुके, शरीर होते हुए भी कुछ समय पहले ब्रह्मा बाबा ने कौन सी स्टेज धारण कर ली? अव्यक्त स्टेज धारण कर ली। तो उस अव्यक्त स्टेज में उस आत्मा को जहाँ कोई जैसे याद करेगा तो वहाँ वो हाजरा हुजूर हो सकती है, क्योंकि बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लिया। जैसे बाप शिव की स्टेज थी वैसे कृष्ण की सोल की भी स्टेज बन चुकी थी। तो बोला कृष्ण की आत्मा हाजरा हुजूर है। कहाँ है वह? वो तो किसी को पता नहीं। बुद्धि कहती है मनुष्य को 84 जन्म जरूर लेने पड़ते हैं। कृष्ण की आत्मा कहाँ न कहाँ भटकती जरूर होगी, भटकती जरूर होगी। गी क्यों लगाया है? कि कृष्ण की सोल जो है भले अव्यक्त स्टेज में रहती है लेकिन कहीं न कहीं इस दुनिया में ही रहेगी, या दुनिया से पार परमधाम में चली जाएगी। अभी परमधाम तो कोई वापस जा ही नहीं सकता। अच्छा शरीर छोड़ दिया उन्होंने 68-69 में, तो भी उनकी सोल परमधाम वापस नहीं गई। वो जरूर कहीं न कहीं इसी दुनिया में कोई बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही उतरना है। जिन जिन बच्चों में वो प्रवेश करेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उन बच्चों में उनके संघ का रंग उनको जरूर लगना है। 1365 की वाणी का दूसरा पेज, क्योंकि वो भी आत्मा तो है ना। कौन? दादा लेखराज की सोल, कृष्ण की सोल क्या है? आत्मा है या परमात्मा है? आत्मा है। आत्मा कहाँ जाती नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती है। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण थोड़े ही होंगे, कितने लक्ष्मी नारायण होते हैं? हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण कितने होते हैं? आठ गद्दियां चलती है ना। हाँ, तो कोई एक लक्ष्मी नारायण थोड़े ही होंगे, सारी सूर्यवंशी राजधानी थी। तो सिद्ध होता है सूर्यवंशी देवताएं ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनको ही तमो प्रधान बनना है, वो ही फिर ज्ञान लेकर के बी के मुखवंशावली बनते हैं, फिर से देवी देवता बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आया हुआ, क्या यज्ञ के आदि में भी तुमको मैंने ही सिखलाया था और अंत में भी अब फिर से आया हुआ हूँ। फिर से अक्षर कोई कह नहीं सकता क्या? ये सिवाय बाप के और कोई भी कह नहीं सकता। बाप आकर के कहते हैं यज्ञ के आदि में भी मैंने स्वर्ग का सैंपल स्थापन किया था। कहाँ? कराची में, जब चारों ओर खून की नदियां बह रही थी, उधर मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी, तो वहां कराची में वो 300-400 आत्माएं शांति में लगी पड़ी थी, कोई दुख नहीं था। वो तो सैंपल था, छोटा सा रूप। अभी इस नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का नजारा फिर पेश करूंगा, तो मैं फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखाने आया हूँ। ऐसे थोड़ी कहेंगे तुम फिर से हमारे फॉलोअर आए बने हो, पहले भी बच्चे थे अभी भी बच्चे हो। तुम कहते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से ये फॉलोअर बने हैं, कोई को भी कल्प की आयु का पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई हुई थी। जो कुछ सुनता हूँ आज से 5000 वर्ष पहले भी सुना हुआ था, मैगजीन में भी ये बात डाल सकते हैं 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई हुई थी। ये ज्ञान तो और किसी की बुद्धि में नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि में है, तुम साक्षी होकर के देखते हो। क्या पहले भी ये लड़ाई हुई थी, अब फिर से ये लड़ाई होनी? पहले कब हुई थी? बस बेसिक वाली बात, फिर से 5000 वर्ष पहले के लिए कहा जाता है। पहले भी लड़ाई हुई थी और अब फिर से ये लड़ाई होनी है, पहले कब हुई थी आदि में? कब? वही 42 से 45 के बीच ये लड़ाई हुई थी यज्ञ के अंदर भी। क्या? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। उस विनाश ज्वाला में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो अभी फिर वो लड़ाई सामने खड़ी हुई है। ये ज्ञान तो और किसी की बुद्धि में है ही नहीं कि आज में भी ये लड़ाई हुई थी और अभी फिर से ये लड़ाई सामने खड़ी हुई है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, तुम साक्षी होकर के देखते हो। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग और ज्ञान सिखाने आया हूं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। कौन? शिव बाबा। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। बाप बन करके यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज रोपण भी किया था। किसमें? हैं? अरे बाप बीज रोपण किसमें करता है? बाप बीज बोता है तो किसमें बोता है? माता में बीज बोता है। तो बाप ने आकर बीज बोया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा है, आम बीज प्रदा पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। वेदों में भी ये बात बताई, द्विलोक और पृथ्वी लोक, पृथ्वी है माता और द्विलोक है पिता। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों में भी जो बातें लिखी हैं, उन बातों को बाप आकर सार समझाते हैं कि ये झूठी बातें नहीं है। उनकी समझने का भूल अलग अलग प्रकार का हो जाता है। तुमको आए करके ज्ञान देता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, ये दुनिया ही पतित है। बल कितने भी गुफाओं आदि में बैठे हो, परंतु पावन एक भी नहीं है। क्या वो गुफाओं में जाके गुप्त में क्यों बैठ जाते हैं? इसलिए बैठ जाते हैं, गुफा में जाके बैठेंगे तो कोई का संग का रंग नहीं लगेगा। लेकिन संग का रंग तो नहीं लगेगा, लेकिन पैदाइश तुम्हारी कहाँ से हुई है? उसी गुमूत से पैदाइश हुई ना, तो जिसकी पैदाइश ही गुमूत से हुई है वो पावन कैसे हो जाएगा? बाप ये आकर के ऐसी युक्ति सिखाते हैं कि पतितों को पावन बनाए देते। पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, पावन दुनिया में फिर पतित भी एक नहीं होता। माना इस नरक की दुनिया के बीच जो स्वर्ग का नजारा बनेगा वो अलग होगा, अलग थलग, इस दुनिया में मिक्स नहीं होगा। वो संगठन ईश्वरीय संगठन, ब्राह्मणों का संगठन, ऐसा संगठन होगा जिसमें कोई भी विकारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। अभी क्या होता है, अभी तो वो ईश्वरीय सत्संग चलता है तो कोई विकारी भी आकर के बैठ जाते हैं, कितना भी मना करो फिर भी आके बैठ जाएंगे। बाप कहते हैं वहां कोई भी प्रवेश कर नहीं सकेगा। ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा। तो ये पापतित दुनिया है, इसमें पावन एक भी नहीं है, इम्पॉसिबल। सब पतित हैं। बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप ये करते हैं जो मुझे परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके कण कण में कुत्ते बिल्ली में ठोंक देते हैं। क्या कण कण में? माना जो कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है, मिट्टी का कण होता है ना, उसको जूते की ठोकर सब कोई मारता रहता है, ठोकर मारता है ना। तो कण कण को जैसे जूते की ठोकर मारी जाती है, ऐसी जिसकी कोई वैल्यू नहीं उसमें भी मेरे को व्यापक बताई देते हैं। माने जो कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, घड़ी घड़ी ठोकरें खाती रहती है, उनको उनमें भी शिव बाबा को व्यापक समझ लेते हैं, उनके सामने भी सत्यवचन महाराज कर देते हैं। कुत्ते बिल्ली में है, पत्थर में है, माने पत्थर बुद्धियों में भी वो व्यापक है। ऐसे ऐसे पत्थर बुद्धि है उनमें भी व्यापक समझ लेते हैं। कुत्ते की तरह कामी जो पार्ट बजाने वाले हैं उनमें भी व्यापक समझ। लेकिन इन सब बातों का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। जो कुत्ते की तरह कामी है उनको उनमें उनको भी भगवान बना करके मंदिरों में बैठाई दिया जाता है, उनकी भी बातें सुनो कि ये तुमको श्रीमत देते हैं, ये तुमको दृष्टि देते हैं, इनकी बात को मानो। तो बाप कहते हैं ये सारी दुनिया पतित है, एक भी श्रीमत नहीं दे सकता, सब भ्रष्ट मत देते हैं। मनुष्य के 84 लाख जन्म कहते हैं और मुझे कौन कौन में बाप व्यापी बता दिया है, पत्थर ठिककर में ठोंप दिया है। भगवान को गाली देना इन जैसा महान पापात्मा कोई होता नहीं, इसलिए बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करने मैं आता हूं। क्या वो साधु क्या कहते हैं? तो साधु कहते हैं कि भगवान तो आकर सिर्फ ज्ञान की वाणी चला के चला जाता है, बाकी पतितों को पावन बनाना, पतित दुनिया को पावन बनाना ये हमारा काम है, बैठ करके वाणी चलाएंगे। बाप कहते हैं ये टीचर का काम मैं खुद आकर के करता हूँ, मनुष्यों का काम नहीं है टीचर बन करके बैठना, वो सच्ची पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकते। बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो, इन सबको भूल जाओ, ये सारा रावण राज्य है, सारी सृष्टि लंका है, सारी सृष्टि समुद्र के बीच में है ना, सारी सृष्टि शोक वाटिका में है। क्या कोई भी दीदी दादी दादा भी ये कह सकता है कि हम शोक की दुनिया से बाहर हैं, हमको दुख फील नहीं होता कभी, हम सुख की दुनिया में आ गए हैं? कोई नहीं कह सकता, सब शोक वाटिका में है। बाप कहते हैं तुमको काल पर जीत पहनाने के लिए आया हूं, है तुम्हारी अवस्था कैसी बना दूंगा कि तुम काल के ऊपर जीत पा लेंगे? काल माना मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बगैर तुम्हारे पास नजदीक नहीं आ सकती, जब तुम चाहेंगे तब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जब तक नहीं चाहेंगे तब तक तुम्हारा शरीर छूट नहीं सकता। तो ये नरक है, एक दो को मारते काटते खाते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। इसलिए चित्र बनाया है हियर नो इविल। कौन सा चित्र बनाया है? हैं? तीन बंदरों का चित्र बनाया है ना, एक बंदर कान पर हाथ रखे हुए, हियर नो इविल, दूसरा बंदर आंख पर हाथ रखे हुए है, सी नो इविल। तीसरा बंदर मुंह पर हाथ रखे हुए है, टाक नो इविल। तो ये चित्र बंदरों का चित्र बनाया है, ये तुम्हारे लिए है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुमको बाप कहते हैं, बाहर की बातें मत सुनो। हैं? क्या कहते हैं? तुम बाहर की बातें मत सुनो तो क्या करें? रेडियो सुनना बंद कर दें? हैं? अखबार पढ़ना बंद कर दें? अरे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने अखबार पढ़ना और रेडियो सुनना बंद किया है? और बाप क्या कहते हैं? अगर वो बंद नहीं करेंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे? हैं? जिंदा रहेंगे ना, तो फिर काहे के लिए ना बंद कर दें? बोला, बाप कहते हैं बाहर की बातें ना सुनो, हियर नो इविल। ये है ही इविल्स की दुनिया। क्या ये सारी दुनिया भूत प्रेतों की है? सतयुग में नॉन इविल कहेंगे, वहां बुरी बात होती नहीं। साधु संत जो तुमको सुनाते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी कहते हैं, ये सब कभी न सुनो। नंबर 1 के वो शैतान हैं, कौन? जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आया, मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया, ये नंबर 1 शैतान है। रावण की मत पर कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर है, परंतु ये भी समझते नहीं है कि रावण क्या है, हम वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? हैं? रावण को वर्ष वर्ष क्यों जलाया जाता है? अरे हर वर्ष क्यों जलाना, एक वर्ष जल गया खत्म हो गया, बार बार क्यों जलाते हैं? ये बार बार जलाने की बात नहीं है, वास्तव में ये तो शूटिंग पीरियड की बात है, कि जब चारों युगों की शूटिंग होती है, को द्वापर युग और कलयुग की शूटिंग में रावण को जलाते हैं, उसके जी को जलाते हैं, और जितना हम उसको जलाते जाते हैं, राम की आत्मा ज्ञान बाण छोड़ छोड़ करके, अग्नि बाण छोड़ कर उनको जितना जास्ती जलाती है, उतना ही अगले वर्ष वो भक्ति मार्ग का आडंबर और ज्यादा खड़ा कर देते हैं, और ज्यादा रावण का रूप बढ़ जाता है। तो सबसे पुराना नंबर 1 दुश्मन है रावण। बाप अगर बतलाते हैं इन 5 विकारों पर जीत पानी है। भारत में ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, चढ़ती कला थी, 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला हुई, उतरते उतरते अब कोई कला नहीं रही। 84 का जन्म का जो चक्कर है वो भी अभी पूरा हुआ। अभी बाप आकर फिर से तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं, फिर से लायक बनाते हैं। माने यज्ञ के आदि में भी तुम्हें लायक बनाया था, फिर से आकर तुमको लायक बनाए रहे हैं। रावण ने तुमको नालायक बनाई दिया, तुम नरकवासी बन पड़े हो, अब फिर इन पर जीत पहनो। बाप कहते हैं अभी काम शिक्षा से उतरो, काला मुंह मत करो। काला मुंह तो तुम्हारा पहले से ही है, काम शिक्षा पर बैठने से और ही काला मुंह हो जाएगा, फिर गोरा बनाने वाला कोई मिलेगा नहीं। अभी ही तुम सुंदर बनते हो, जो कल पहले बने होंगे वो ही बनेंगे, दूसरे तो कोई बन न सके। परमपिता परमात्मा ने परमपिता ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, किसके द्वारा रची? प्रजापिता के द्वारा और ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा, हैं? नहीं होगा ना। फिर वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, हैं? कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ चला गया, तो उनका सूक्ष्म बतनवासी हो गया। बाप कहते हैं प्रजापिता का भी सूक्ष्म बतनवासी होता नहीं, जब तक इस सृष्टि पर 500 करोड़ में से एक भी प्रजा है तब तक प्रजापिता सूक्ष्म बतनवासी या कोई शांति धाम वासी नहीं बन सकता। रचना रचकर फिर सूक्ष्म बतन फरिश्ता बन जाते, जब तक पूरी रचना नहीं रची गई है तब तक सूक्ष्म बतनवासी नहीं बन सकते। तुम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी बन फिर तुम जाकर फरिश्ता बनेंगे। क्या कहा? जब तक मनन चिंतन मंथन सुदर्शन चक्र का नहीं चल रहा है तब तक नई दुनिया के वासी नहीं बन सकते। अच्छा।